दादी नानी बड़ी कहानी सुनाने से पहले बच्चों को एक छोटी सी तेनाली राम की फनी कहानी सुनाएगी। एक बारी की बात है, राजा कृष्ण देव के यहाँ कोई फंक्शन मनाया जा रहा था। उस फंक्शन को हिंदी में उत्सव कहते हैं। उस उत्सव में दरबारियों को राजा बहुत अच्छे-अच्छे गिफ्ट दे रहे थे। राजा ने सबको कहा कि मैं एक जगह सब गिफ्ट्स रख रहा हूँ, और सभी लोग बारी बारी से आएं और अपनी पसंद से एक एक चीज उठाते ले जाएं। सभी गिफ्ट्स पलंग पर बड़े महंगे महंगे कीमती कीमती गिफ्ट रखे हुए थे। सब लोगों ने अपने पसंद के गिफ्ट उठा लिए और आखिर में एक छोटी सी तांबे की थाली बच गई। थाली की कीमत कुछ भी नहीं थी, वो तो बहुत सस्ती सी थी। सबने देखा तेनाली राम तो दरबार में था ही नहीं। सब लोगों को मजे आ रहे थे कि अब तेनाली राम को वही थाली लेनी पड़ेगी। ये सोचकर सब बहुत खुश थे। तभी तेनाली राम दरबार में पहुंचा। दरबारियों ने कहा, तेनाली तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इनाम रखा है, सबसे बड़ा गिफ्ट रखा है, ले लो। देखो तांबे की थाली तुम्हारे लिए बची है। तेनाली ने थाली को उठाया और उसे अपनी पगड़ी से ढक लिया। राजा ने पूछा, तेनाली तुम इसको ऐसा क्यों कर रहे हो? तेनाली ने कहा, अरे महाराज, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। ये थाली मैंने पगड़ी से इसलिए ढकी है कि लोग ये ना कहें, इतने बड़े राजा ने अपने खास दरबारी को खाली थाली देकर ही सम्मानित किया है। महाराज, इसमें आपकी कहीं बेइज्जती ना हो, इसीलिए मैं इस थाली को ढककर ही ले जाऊंगा। तेनाली राम की इस बात से राजा बहुत इंप्रेस्ड हुए और उन्होंने अपने गले में से डायमंड्स की माला निकालकर तेनाली राम को दे दी। ऐसे थे तेनाली राम। अब सुनेंगे बच्चे एक बड़ी कहानी, एक राजा की। राजा बहुत प्रतापी और वीर थे। उन्होंने अपने दरबार में बहुत टैलेंटेड आदमी रख रखे थे। कोई बहुत अच्छा घोड़ों का पारखी था। पारखी मतलब वो देख के बता देता था कि ये घोड़ा कैसा है। कोई हाथियों का पारखी था और कई बड़े बड़े पहलवान भी थे। और कई दरबारी बहुत बहादुर थे। वो इतने बहादुर थे कि वो खाली हाथों से शेर हाथियों से भी लड़ सकते थे। राजा शिकार का भी बहुत शौकीन था। राजा के पास बहुत सी अच्छी अच्छी तलवारें थी और इसके अलावा बहुत से अच्छे अच्छे शस्त्र भी थे। राजा के पास सुंदर तलवारों की बहुत बड़ी कलेक्शन थी। तलवारें ऐसी थी कि इतनी शार्प, शेर की भी गर्दन एक मिनट में उड़ा कर रख दे, हाथी की सूंड को भी एक बार में काट कर रख दे। इस तरह की तलवारें राजा के पास थी और इन तलवारों की परख के लिए राजा ने एक विशेष खास आदमी को अपने दरबार में रख छोड़ा था। वो हर नई तलवार को परख करता, टेस्ट करता और उसके कहने पर राजा उस तलवार को खरीदते थे। वो अच्छी तलवार के अच्छे प्राइस भी दिलवा सकता था लोगों को। सब लोगों को पता था, अगर हम तलवार को लेकर राजा के दरबार में बेचने के लिए जाएंगे तो जो तलवारों को चेक करता है, पारखी है, वही राजा को कीमत बताएगा। उस गुणी आदमी में एक खराबी थी। वो अब आहिस्ता आहिस्ता तलवार बनाने वालों से रिश्वत लिया करता था। जो तलवार बनाने वाले उसको रिश्वत में ज्यादा पैसे देते, उसकी तलवार को वो बेस्ट तलवार कहता और उसको राजा से भी काफी कीमत दिलवा देता था। और जो लोग उसको रिश्वत नहीं देते थे, राजा को कहता ये तलवार कोई खास नहीं है और राजा को खरीदने के लिए मना भी कर देता था। तलवार को टेस्ट करने का, चेक करने का उसका तरीका भी बड़ा अजीब था। वो तलवार को नाक के पास ले जाता, फिर उसे सूंघता। सबको लगता कि नाक से सूंघ कर वो तलवार के बारे में बताता है। इस बात से सभी बड़े हैरान होते थे। एक बार एक लोहार ने राजा के लिए मेहनत से तलवार बनाई, बहुत अच्छी तलवार थी, लेकिन उसने उसको रिश्वत नहीं दी। वो रिश्वत देना और लेना बहुत बुरा समझता था, इसीलिए तलवार के चेक करने वाले ने इस तलवार को बहुत बेकार बता दिया। लोहार को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने मन ही मन में तलवार के पारखी से, पारखी मतलब जो चेक करता था, उससे बदला लेने का सोच लिया। अब कुछ महीनों के बाद उसने उसी तलवार को और भी तेज किया, उस पर बहुत अच्छी चमकीली पॉलिश भी लगाई, उसके मूठ का रंग भी बड़ा सुंदर कर दिया। मूठ बोलते हैं जिससे तलवार को पकड़ा जाता है। इसके बाद उस तलवार को लेकर वो दोबारा फिर दरबार में आया। पारखी ने रिश्वत न देने के कारण उस तलवार को फिर सोचने लगा। उसको पता था कि वो उस तलवार को सूंघ कर रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि लोहार ने उसको रिश्वत नहीं दी थी, और पता था फिर वो मेरी तलवार को बुरा बनाएगा। इसके लिए वो कुछ प्लानिंग करके आया था। राजा के दरबार में पहुंचकर उसने सबको प्रणाम किया और फिर पारखी को अपनी तलवार चेक करने के लिए दे दी। उसने तलवार को मयान से बाहर निकाला। वो हमेशा की तरह तलवार को अपने नाक के पास ले गया और सूंघने की एक्टिंग करने लगा। लेकिन ये क्या, नाक के पास ले जाते ही उसे तो तड़ातड़ छींके आने लगी। उन छींकों के कारण तलवार उसके नाक से जा लगी। तलवार बहुत शार्प थी और उस दुष्ट पारखी की नाक का अगला हिस्सा कटकर जमीन पर आ गिरा। असल में लोहार ने अपनी तलवार की धार पर लाल मिर्च लगा दी थी। उसको पता था कि पारखी जब भी उसको सूंघेगा तो उसको छींके आ जाएंगे और उसकी नाक कटकर गिर पड़ेगी। बस इस घटना के बाद दुष्ट पारखी ने अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ा। उसने महाराज से कहा, महाराज ये तलवार तो बहुत अपशकुन वाली है, क्योंकि जब इसको परखने वाले की नाक ही कटकर गिर गई हो तो ये तलवार तो देश की नाक कटवा देगी। नाक कटवाने का मतलब होता है बेइज्जती करवाना। अब उसने ये बहाना लगा दिया। महाराज तो उसकी बातें बहुत मानते थे, उन्होंने उसकी बातों में आकर तलवार को खरीदा ही नहीं, उल्टा उसको पनिशमेंट दे दी और कहा तुम इस देश को छोड़कर चले जाओ, देश निकाला दे दिया। लोहार ने राजा को नमस्कार किया और उस देश से जाकर दूसरे देश में जाकर रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उस राजा पर साथ के राजा ने हमला कर दिया। महाराजा अपनी सेनापति को सामना करने के लिए भेजा, लड़ने के लिए भेजा, लेकिन हमला करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली था। उसने तो सेनापति को अरेस्ट कर लिया और अब तो वो राजा चारों तरफ से घिर चुका था। अपनी ये हालत देखकर राजा खुद ही बची हुई सेना लेकर निकल पड़े। किले का दरवाजा खोलकर वो दुश्मनों पर टूट पड़े। उनका घोड़ा बहुत फुर्तीला था, कितने ही दुश्मनों को कुचलता हुआ वो बड़ी तेजी से घोड़ा भाग रहा था। अचानक महाराजा की तलवार टूट गई। उन्होंने कंधे से धनुष उतार लिया और वो धनुष से तीर चलाकर लड़ने लगे। अचानक शत्रु सेना का एक सिपाही का बाण उनके धनुष की डोरी को काट गया और सामने दूसरे तरफ का सेनापति भाला उठा रहा था। अपनी जान बचाने के लिए महाराज ने भाला फेंका। वो भाला तो उस सेनापति को मारता हुआ दूर निकल गया, लेकिन इससे क्या होता है, दुश्मनों की सेना ने महाराज को चारों ओर से घेर लिया। अब तो महाराज के पास कोई भी हथियार नहीं था। बिना हथियारों के वो चारों तरफ से दुश्मनों के बीच में घिर गए थे। अब उसके बाद तो अचानक से उन्होंने देखा एक सेनापति, एक आदमी ने अपना मुंह छिपाया हुआ था और उसने महाराज को अपनी तलवार पकड़ा दी। महाराज के हाथ में एकदम से जो ही तलवार आई तो बहुत हिम्मत करके दुश्मनों पर टूट पड़े। सचमुच ये तलवार तो बहुत मजबूत थी, बहुत तेज थी। जिस भी तलवार के ऊपर वो पड़ती उसके दो टुकड़े हो जाते, जो भी दुश्मन सामने आता उसका सिर कट जाता। बस थोड़ी देर में महाराजा ने दुश्मनों की सेना को हरा दिया और चारों तरफ महाराज की जय जयकार होने लगी। अब महाराज ने उस मुंह ढके सिपाही को पास बुलाकर पूछा, भाई तुम कौन हो? आज तो तुमने हमारे देश की नाक को बचा दिया, नाक को मतलब इज्जत को बचा दिया। अब उसने कहा, महाराज मैं वही लोहार हूं जो आपके लिए तलवार लाया था और जिसे आपके पारखी ने अपशकुनों ही बता दिया था। अब आप ही बताइए कि मैंने देश की नाक को कटवाया या बचाया। महाराज ने कहा, भाई ठीक कहते हो तुम, कोई भी चीज अपशकुन नहीं होती। अपशकुन तो ये तो फजूल की बातें होती हैं, मन का बहम होता है, और तुमने आज तो अपने देश की इज्जत को बचाया है। फिर तो राजा ने उस पारखी को बहुत सजा दी, जेल में डाल दिया और उस लोहार को अपने दरबार में रख लिया।